नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत और आज आपके साथ मैं हूं मुदिता। आज के इस एडिशन में हम तमाम खेल खबरों पर, खासकर पेरिस ओलंपिक से जुड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली। विजय, स्पोर्ट्स कैन में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
और इसके साथ ही हम पेरिस में मौजूद आकाशवाणी की टीम से भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो विजय, ओलंपिक खेल अपने समापन की ओर बढ़ रहे हैं, कई दिनों का जो मेला चल रहा था धीरे धीरे हो रहा है। कल अच्छी खबरें मिली हैं हमें, आज एक पदक का इंतजार है
जी।
तो इन सब पे हम अभी आगे बात करेंगे, पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक के लिए अमन सहरावत का मुकाबला आज रात। पेरिस ओलंपिक में मेंस जैवलिन थ्रो में भारत के नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। एथलेटिक्स में 4x400 मीटर रिले रेस में भारत की पुरुष और महिला टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में असफल। भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर पिया श्रीजेश और शूटर मनु भाकर ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की अपील पर सुनवाई करने के लिए सहमत। निर्णय ओलंपिक खेलों के समापन से पहले जारी किया जाएगा। विजय, शुरुआत करते हैं हम आज रात जो मुकाबला होने वाला है पेरिस ओलंपिक में। आज अमन सहरावत पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक के लिए प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज का सामना करेंगे। भारतीय समयानुसार यह मुकाबला रात 9:45 पर शुरू होगा। अमन सहरावत को कल पूर्व विश्व चैंपियन और 2016 के रियो ओलंपिक के रजत पदक विजेता, शीर्ष वरीयता प्राप्त जापानी पहलवान री हिगुची से सेमीफाइनल में हार मिली थी, जिसके बाद अब वो कांस्य पदक मैच में हिस्सा लेंगे। तो विजय, रेसलिंग का की हमारी आखिरी उम्मीद, पिछले 4 ओलंपिक से पदक ला रहे थे हम रेसलिंग में, क्या लगता है कि इस बार भी हम खाली हाथ तो नहीं आएंगे?
हाँ, आप अमन से उम्मीद रख सकते हैं क्योंकि जितने यंग रेसलर्स हैं
जी,
उनमें सबसे प्रतिभाशाली अगर आप माने जाते हैं वो अमन। दिल्ली में छत्रसाल स्टेडियम में ही प्रैक्टिस करते हैं और फेडरेशन को भी उनसे काफी उम्मीद थी जाने से पहले, और वो खरे उतरे। ठीक है, सिल्वर गोल्ड की लाइन में नहीं आए लेकिन कांस्य पदक तो मिलना चाहिए उनको
जी। बिल्कुल। और हम श्रोताओं को बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में रवि दहिया ने इसी स्पर्धा में रजत पदक जीता था। और दिलचस्प बात यह कि अमन ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारत कुश्ती ट्रायल में दहिया को ही हराया था इस बार जी। तो रेसलिंग में प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, एक तो पहले क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, ओलंपिक कोटा हम नहीं जीत पाए, केवल 6 हमारे रेसलर्स जा पाए, उसमें पुरुष रेसलर तो केवल एक ही जा पाया था
जी। हाँ।
तो और दूसरा विनेश का अभी मामला चल ही रहा है, उस पर अभी हम आगे बात करेंगे। और अब हम आते हैं हमारी सबसे बड़ी जो मेडल होप थे पेरिस ओलंपिक में। कल देर रात मेंस जैवलिन थ्रो में भारत के नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड मेडल जीता। इसके साथ ही नीरज चोपड़ा ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। तो क्या कहेंगे विजय कल के नीरज के प्रदर्शन पर आप?
नीरज ने अपना बेस्ट दिया
जी।
आप देखिए, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपना बेस्ट सीजन का थ्रो वहीं करूंगा, उन्होंने हासिल किया, लेकिन वो बेस्ट अरशद के सामने कम पड़ गया, क्योंकि अरशद ने, अगर आप देखें जिस ढंग से उन्होंने शुरुआत बेशक फाउल से की, लेकिन अपना सेकंड थ्रो बहुत जबरदस्त ओलंपिक रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने, 92.97। और वो मेरे ख्याल से मुदिता, मुझे लगता है वो प्रेशर एक बन गया नीरज के ऊपर, क्योंकि वो थोड़ा सा नर्वस भी दिख रहे थे। हालांकि बाद में उन्होंने बताया, बहुत कम लोगों को मालूम था कि वो एक ग्रॉइन इंजरी
जी
परेशान थे।
तो आइए सुनते हैं नीरज ने अपने कल की जीत के बाद क्या कहा है।
कंट्री के लिए जब भी मेडल जीतते हैं उसकी खुशी तो होती है, लेकिन वही है कि पर्सनली, मेडल की बात अलग है लेकिन अब टाइम है इम्प्रूवमेंट करने का थ्रो में भी, और जो भी कुछ इंजरी वगैरह है जो चल रही है उन पे अभी काम करना है और जो कमियां हैं उनको सुधारेंगे, टीम के साथ बैठ के बात करेंगे। और हर किसी दिन किसी एथलीट का दिन होता है, आज अरशद का दिन था, कभी जब बात करें टोक्यो की और बुडापेस्ट की वहां पे अपना दिन था या एशियन गेम्स में अपना दिन था, तो हर एक एथलीट का जो बॉडी है वो एक उस दिन अलग ही उसमें होती है, हर चीज परफेक्ट होती है। जैसे अरशद की थी, अपना भी काफी अच्छा रहा लेकिन फिर भी कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ चीजें हैं और थोड़ी सी इंजरी है, इसको थोड़ा ठीक करके जो फोकस इंजरी की तरफ रहता है खेलते टाइम वो उस पे ना हो और परफॉर्मेंस पे हो, तो थ्रो का तो बहुत अच्छा है, अंदर थ्रो तो है, पर वो निकलेगी जब भी जब एक बार सब तरीके से फिट हो जाएंगे और मेंटली बिल्कुल तैयार होंगे। लेकिन आज शायद से वो नहीं था कि नहीं बजवा पाएंगे राष्ट्रगान, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, आगे फिर मौका मिलेगा और फिर से हमारा राष्ट्रगान होगा, पेरिस में नहीं तो कहीं और से ही।
तो जैसा नीरज कह रहे थे, और मुझे लगता है खेलों से यही जज्बा हम सबको सीखना चाहिए कि हर हार हर निराशा के बाद फिर से उठ खड़े होना है, और वो जो कह रहे हैं कि आगे मौका होगा और हम जरूर राष्ट्रगान फिर से बजेगा, हम सब उसको सुनेंगे।
जी हाँ,
नीरज से उम्मीद हमें है। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह लालाज जो कि पेरिस में मौजूद है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार महेंद्र जी, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स कैन में।
धन्यवाद।
तो महेंद्र, कल का जो नीरज का प्रदर्शन रहा, नीरज खुद थोड़ा मायूस है उस प्रदर्शन से, लेकिन जैसे वो खिलाड़ी हैं, जिस जज्बे के वो खिलाड़ी हैं, वो फिर से खड़े होने की बात तो कर रहे हैं।
बिल्कुल मुनीता और विजय जी नमस्कार। और ये जो देखिए नीरज बार बार एक बात कहते हैं, वो थोड़ा मजाइया लहजे में जरूर कहते हैं इस बात को कि मेरे अंदर अभी भी थ्रो है, यानी मतलब ये आप 90 मीटर वो क्रॉस नहीं कर पाए तो अब उनका कहीं ना कहीं मन में ये है कि वो 90 मीटर में करूंगा
जी।
और अरशद के एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के बारे में तो क्या बोलें, लेकिन नीरज ने अच्छा किया और सिल्वर मेडल भी भारत के लिए अच्छी बात है। और नीरज एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक तरह से वापस बाउंस बैक करेंगे और आगे भारत के लिए जरूर अच्छा करेंगे, उनके अंदर थ्रो बाकी है, ये बात ही बार बार कह रहे हैं।
बिल्कुल ठीक बात है, और हम सबको पूरी उम्मीदें हैं नीरज के साथ, तो हमारी शुभकामनाएं भी हैं उनके साथ जी। और वही महेंद्र, आज कुश्ती में रेसलिंग में हमारा आखिरी उम्मीद अमन सहरावत से बाकी है, तो मुकाबला कुछ देर में शुरू होने वाला है। क्या अमन से आपकी कोई बात हुई है, या जो विनेश वाला मामला हुआ उसके बाद क्या माहौल है वहां पर, क्या रेसलर्स हमारे अभी भी अमन जो है खास करके वो अभी उस जोश में है?
बिल्कुल जोश तो रेसलर्स में है ही, और जैसा विजय जी अभी कह रहे थे बिल्कुल कि अमन से उम्मीदें हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और हम भी उम्मीद करते हैं और डिलीवर करेंगे। लेकिन मुदिता एक बात, ये चाहे पुरानी हो गई हो लेकिन ये आज के स्पोर्ट्स कैन और मुझे लगता है शायद साल भर जारी रहनी चाहिए, वो ये कि कल जो हमने भारतीय हॉकी में कमाल किया है उसकी चर्चा इन ओलंपिक खेलों में किसी एक खेल की सबसे ज्यादा चर्चा होगी, या हम इन ओलंपिक खेलों को बार बार याद करेंगे आगे आने वाले इतिहास में, तो हम भारतीय हॉकी के कल के प्रदर्शन को, कल के ब्रॉन्ज मेडल को जरूर याद करेंगे।
बिल्कुल शानदार प्रदर्शन था जिसको कहना चाहिए, और बिल्कुल हम चैंपियंस की तरह खेले हैं कल के मैच में तो जी।
बिल्कुल मुदिता, सबसे अच्छी बात यह कि देखिए एक तो ये कि जो टोक्यो ओलंपिक खेलों से पहले भारतीय हॉकी, देखिए हॉकी से जैसे कल श्रीजेश बार बार ये बात कर रहे थे कि सभी हॉकी हमारे लिए इमोशंस का खेल है, बाकी खेल लोग खेलते हैं लेकिन हॉकी से हमारी भावनाएं पूरे देश की और हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और जो भावनाएं जुड़ी हुई उस खेल में अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो हमें सच में खुशी होती है। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक से पहले एक बार ऐसा लगने लगा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब भारतीय हॉकी कहीं नहीं है, और टोक्यो ओलंपिक के ब्रॉन्ज मेडल ने एक तरह से यूं माना जाए कि हमें एक नई संजीवनी दी उस ब्रॉन्ज मेडल ने। और उसके बाद वापस जब हमने थोड़ा सा वापस वर्ल्ड कप में जब हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो एक बार फिर से लगने लगा कि अब जब यूरोपियन हॉकी के आगे भारतीय हॉकी शायद नहीं टिक पाए। लेकिन जैसे ही हमने एशियन गेम्स जो फुल्टन आए, ग्रैम रीड से इन्होंने जब टेक ओवर किया, ग्रैम रीड ने भी बहुत अच्छा काम किया, टीम को बिल्ड किया, उन्हें बहुत क्रेडिट जाता है।
महीन जी, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी, हमारे जो एक्सपर्ट हैं विजय जी वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं।
महेंद्र जी एक ही सवाल पूछना है कि हॉकी जैसे बिखर गई थी टोक्यो ओलंपिक से पहले, तो टोक्यो और पेरिस, तो आपको आप जल्दी से ये बताएंगे कि कितना क्रेडिट आप श्रीजेश को देंगे, एक आदमी जो भारतीय हॉकी का जो है पूरा वजन अपने कंधों पे लेके चला है।
बिल्कुल सही। देखिए विजय जी, यहाँ दोनों चीज है। एक तो इस बार फुलटन ने और उनके साथ पैडी उपटन जो वो भी लगे हुए थे, तो इन्होंने एक टीम को एक यूनिटी दी, मतलब एक दूसरे प्लेयर्स को। कल जब मेडल मिल रहा था, आप देखिए कि कप्तान हरमनप्रीत ने अपने गले का मेडल सबसे पहले श्रीजेश के गले में डाला, श्रीजेश ने अपना मेडल हरमनप्रीत के गले में डाला। तो इन्होंने आपस में सिर्फ चार प्लेयर्स ऐसे थे जो पहली बार ओलंपिक में खेल रहे हैं, और बाकी देखिए सब पिछले ओलंपिक में खेल चुके हैं। लेकिन जो सीनियर प्लेयर्स है उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जिसमें हरमनप्रीत भी है। हरमनप्रीत ने देखिए सबसे ज्यादा गोल किए हैं, क्रूशियल गोल किए हैं, हमको क्वार्टर जो ब्रॉन्ज मेडल मैच है वो उन्होंने जिताया है। और श्रीजेश तो भाई वेटरन है ही, वो एक ऐसा आदमी है जो एक तरह से अपने सीनियर पर कितने गोल झेल गया। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, श्रीजेश और हरमनप्रीत तो सीनियर प्लेयर्स ने भी काम किया, लेकिन जो नए लड़के आए अभिषेक वगैरह उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया।
जी बिल्कुल,
ये पूरी टीम की विजय है, पूरी टीम की विजय।
जी महीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और क्लोजिंग सेरेमनी तक हम आप लोगों से जुड़े रहेंगे। और अब हम चलते हैं एथलेटिक्स की ओर। तो एथलेटिक्स में 4x400 मीटर रिले रेस में भारत की पुरुष और महिला दोनों ही टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में असफल रही हैं। और अभी विजय जैसे की बात कर रहे थे महेंद्र श्रीजेश के बारे में, तो आपने भी बात करी, तो उनके बारे में भी खबर है कि मशहूर हॉकी गोलकीपर प्रिया श्रीजेश रविवार को पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में स्टार निशानेबाज मनु भाकर के साथ भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। और इसके साथ ही प्रिया श्रीजेश को हॉकी इंडिया ने जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच भी नियुक्त किया है। तो अच्छी खबरें हैं, श्रीजेश अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, हमारे साथ बने रहेंगे, वो टीम के साथ भी बने रहेंगे। एक खबर जो जिस पर शायद सबकी निगाहें थी वो आई है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स सीएस ने पेरिस ओलंपिक खेलों में महिलाओं की 50 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक से सम्मानित करने के लिए भारतीय पहलवान मनीष फोगाट की अपील पर सुनवाई करने के लिए सहमति दे दी है और कहा है कि खेलों के समापन से पहले निर्णय जारी कर दिया जाएगा। हम श्रोताओं को बता दें कि विनेश ने सीएस में अपनी ओलंपिक अयोग्यता के खिलाफ अपील की थी और 50 किलोग्राम भार वर्ग में संयुक्त रजत पदक की मांग की थी। विनेश का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील हरीश सालवे और विदुषपत सिंघानिया कर रहे हैं। क्या उम्मीद है विजय?
ये ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है
जी।
और वो विनेश ने मांग की है कि ज्वाइंट सिल्वर
जी
उनके लिए उनको कंसीडर किया जाए। बहुत अजीब ही स्थिति थी अगर आप देखें।
बिल्कुल,
और विनेश ने बहुत कोशिश की,
बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, मतलब इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण किसी एथलीट के लिए कुछ हो नहीं सकता जो हुआ है विनेश के साथ।
बिल्कुल, और गोल्ड की फाइट करने वाली थी और पता लगा कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो वे बहुत ही मैं कहूंगा वो तो हर्ट हुई
जी।
भारतीय फैंस भी बहुत
बिल्कुल
भी चोट पहुंचे हैं ये इस निर्णय से, पर ये कभी हुआ नहीं, अगर हो जाए
हाँ।
तो मेरे ख्याल से विनेश बहुत डिजर्व करती है।
बिल्कुल, जिस तरह से विनेश खेल रही थी उनसे पूरी हम लोगों को गोल्ड की उम्मीद थी, रात हम सब सोए हैं उस उम्मीद के साथ और सुबह उठने के बाद ये खबर आई थी
जी हाँ।
तो और उस दिन से मुझे लग रहा है अभी तक कोई भारतीय इस खबर से उभर नहीं पा रहा है कहीं।
हाँ, और पूरे कंटिजेंट में भी आप देखिएगा वहां से जो खबरें मैंने पढ़ी हैं, बहुत ही उनको सबको ही दुख हुआ है क्योंकि एक पक्का जो हमको लगता था कि गोल्ड आएगा
जी। बिल्कुल, और भारत के जितने भी सीनियर खिलाड़ी हैं, चाहे अभिनव बिंद्रा हो, सचिन तेंदुलकर हो, ये सब भी विनेश के सपोर्ट में आए हैं। मतलब भारत सरकार तो और भारत की जनता तो है ही, पर ये नाम भी विनेश के सपोर्ट में उतरे हैं जिन्होंने सब बोला है।
जी हाँ, मैंने आज तो पढ़ा कि सुनील गावस्कर जी ने बोला है कि स्ट्रांग प्रोटेस्ट करना चाहिए।
बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल ये तो है ही, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट क्योंकि रेसलिंग और उसके बाद जिस तरह से वो खेली थी इस पूरे टूर्नामेंट में अपनी वेट कैटेगरी को चेंज करके भी, तो मुझे लगता है कि विनेश को इस पर मिलना चाहिए।
आप सबको बड़ी खुशी होगी।
बिल्कुल, और शायद इसी खबर का हम सब इंतजार भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो श्रोताओं, हम आपको इसी खबर के साथ, इसी इंतजार के साथ छोड़ना चाहेंगे और हम सब इंतजार कर रहे हैं कि इस पर सीएएस का निर्णय आए। अगर वो निर्णय विनेश के पक्ष में रहता है तो ये भी भारत की बड़ी जीत होगी,
बहुत जीत,
और उस जीत का इंतजार हम सबको है। तो श्रोताओं, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। विजय, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
धन्यवाद।
और श्रोताओं, इसी के साथ मुदिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।